अनुवाद एवं तात्पर्य रिज्यूमेन ग्रेस अभय चनारण भक्त ने स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की दब्ध जीव इस भौतिक जगत में जिसे वह सुख का साधन समझता है यह सोचकर विस्तार करता है कि वही इस जगत का भोक्ता है। इसी प्रकार यह भौतिक जगत जीवात्मा के सुख के साधन स्वरूप विस्तार करता है। इस प्रकार दोनों ही विस्तार करते हैं किंतु दोनों ही मेरी शक्तियां होने के कारण मुझसे युक्त हैं। परमेश्वर होने के कारण मैं इन फलों का कारण हूं और मनुष्य को यह जानना चाहिए कि ये दोनों ही मुझमें स्थित हैं। तात्पर्य मायावादी सभी वस्तुओं को श्री भगवान या परब्रह्म के तुल्य मानते हैं, फलतः वे प्रत्येक वस्तु को पूजनीय बताते हैं। उनके सिद्धांत के कारण सामान्य लोग नास्तिकता की ओर प्रवृत्त हुए हैं। इस सिद्धांत के बल पर प्रत्येक व्यक्ति अपने को ईश्वर समझता है जो सत्य नहीं है। जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है, मया कमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, कि वास्तविकता तो यह है कि समस्त दृश्य जगत ईश्वर की शक्तियों का प्रसार है। ये शक्तियां भौतिक तत्वों तथा जीवात्माओं के रूप में प्रकट होती हैं। जीवात्माएं ब्रह्मवश यह मान बैठती हैं कि भौतिक तत्व उनके भोग के लिए हैं और वे अपने को उनका भोक्ता मान बैठती हैं। किंतु इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है क्योंकि ये दोनों ईश्वर की शक्तियां हैं। इनका मूल कारण श्री भगवान ही है। यद्यपि ईश्वर की शक्तियों का प्रसार ही यह मूल कारण है किंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर स्वयं विभिन्न प्रकार से विस्तार करता है। मायावादियों के सिद्धांत की भर्त्सना करते हुए गीता में भगवान का कथन है, मत्स्थान मत्स्थान भूतानी न चाहम पार्श्व मत्स्थान सर्वभूतानी न चाहम ईश्वर अवस्थित। सभी जीव मुझमें स्थित है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है और उनकी शक्तियों का विस्तार है किंतु इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं कि सारी वस्तुएं उन्हीं के समान पूजनीय है। भौतिक विस्तार तो क्षणिक है जबकि ईश्वर क्षणिक नहीं है। जीवात्माएं ईश्वर के अंश हैं किंतु वे स्वयं ईश्वर नहीं है। इस जगत में जीवात्माएं अकल्पनीय नहीं है किंतु ईश्वर अकल्पनीय है या चिंतित है। अतः यह सिद्धांत कि ईश्वर की शक्तियां उन्हीं के विस्तार होने के कारण ईश्वर के ही समान है भ्रामक है। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये नष्ट प्रायेण अभद्रेषु नित्यमागत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोक भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। लोके विदमात्मान लोकम चात्मनि संततम उभयम च मया व्याप्तम मई चैव उभयम कृतम। बद्ध जीव इस भौतिक जगत में जिसे वह सुख का साधन समझता है यह सोचकर विस्तार करता है कि वही इस जगत का भोक्ता है। इसी प्रकार यह भौतिक जगत जीवात्मा के सुख के साधन स्वरूप विस्तार करता है। इस प्रकार दोनों ही विस्तार करते हैं किंतु दोनों ही मेरी शक्तियां होने के कारण मुझसे युक्त हैं। परमेश्वर होने के कारण मैं इन फलों का कारण हूं और मनुष्य को यह जानना चाहिए कि ये दोनों ही मुझ में स्थित हैं। अब सही भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सही भक्तों का वरिष्ठ भक्तों का आशीर्वाद लेते हैं इस श्लोक में जो कि महाराज चित्र के तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और अब भगवान जो है उनकी प्रार्थनाओं में चित्रकेतु महाराज को आदेश दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं या जो है उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं चित्रकेतु महाराज को। तो पिछले तीन श्लोकों से 50-51 तीसरा श्लोक है उसके अंदर। तो पहले श्लोक में भगवान अनंत देव उनको कहते हैं कि आप जो हो यू आर परफेक्टली एजुकेटेड, आप जो पूर्णतः शिक्षित हो नारद मुनि और अंगिरा मुनि के द्वारा इसे करके हैं। और पिछले श्लोक के अंदर बता रहे हैं कि मैं ही शब्द और विग्रह अच्छा विग्रह श्री मूर्ति के विग्रह के रूप में जो हूँ वो मेरे शाश्वत रूप है और समस्त जड़ तथा अचर जीवात्माएं जो है वो मेरे ही विस्तार है लेकिन मुझसे अलग है, मुझसे पृथक है, दे आर सेपरेट पार्ट एंड पार्सल। और इस श्लोक के अंदर प्रभुपाद बोल रहे हैं और सभी भगवान जो है तो महाराज को बता रहे हैं कि बद्ध जीव की और की बद्ध स्थिति को अर्थात एक जीवात्मा की बद्ध स्थिति का वर्णन कर रहे हैं अर्थात उसकी रॉन्ग आइडेंटिटी को और कंडीशनल आइडेंटिटी और साथ ही साथ भगवान अपनी स्थिति को भी वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी मैं अपनी बुद्धि से कुछ 5 पॉइंट कलेक्ट कर पाया। तो प्रभुपाद पहला पॉइंट बता रहे हैं द मायावाद फिलोसॉफी सीज एवरीथिंग एज बीइंग इक्वल इन क्वालिटी विद द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड और द सुप्रीम ब्राह्मण एंड देयरफॉर सीज एवरीथिंग एज वर्शिपेबल। तो जो पहला पॉइंट प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मायावादी सभी वस्तुओं को श्री भगवान पर ब्रह्म के तुल्य मानते हैं, फलतः वे प्रत्येक वस्तु को पूजनीय बताते हैं। इस पूरे श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य के अंदर मायावाद सिद्धांत का खंडन करते हैं। तो एक बार प्रभुपाद जी के समय के अंदर जब बॉम्बे के नेशनल गिरिराज स्वामी महाराज प्रचार कर रहे हैं तो वो बहुत बोल्ड स्पीकर थे, सशक्त प्रचारक थे और मायावाद सिद्धांत का बहुत ही जबरदस्त खंडन किया करते थे। गिरिराज महाराज अपने पुस्तक वाटिंग नशीब में लिख रहे हैं और कई वक्त ने वर्णन दिया है, खुद ही बताते हैं। तो बहुत ही स्ट्रांगली जो है मायावाद खंडन का, शंकराचार्य के फिलोसॉफी का खंडन करते थे। तो इधर भी जाते थे बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग। तो प्रभुपाद जो उनके कई गुरु भाइयों ने बोला, कुछ लोगों ने बोला कि भाई आप लाइफ नंबर बनाने जाते हैं तो इतना स्ट्रांगली खंडन मत कीजिए मायावाद फिलोसॉफी का। तो गिरिराज महाराज ने एक दिन चेन्नई में कहते थे तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, सब लोग मेरे को बार बार कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा जो हूँ सॉफ्ट हो जाऊंगा, उतना स्ट्रांग नहीं रहूंगा मायावाद फिलोसफी खंडन करने के लिए। तो गए एक बड़े व्यक्ति के पास और उनको प्रभुपाद जी की बुक्स का एक सेट दिया और एक्सप्लेन किया स्ट्रांग का मूड मिशन इत्यादि। और उस व्यक्ति ने पूछा गिरिराज महाराज से, ये आपके बुक में शंकराचार्य की फिलोसफी के सिद्धांत को आपने लिखा? तो उन्होंने बोला नहीं लिखा है। और फिर दो चार जगह जहां प्रभुपाद शंकराचार्य का नाम लिखते हैं वहां पर लिखा। बोले उनके फिलोसफी का आपने शंकराचार्य को ग्लोरीफाई नहीं किया, कुछ तो किताब बोलता ना। तो वो थोड़ा आराम आराम से बोलते थे, उसके आते याद खंडन नहीं करना ऐसा करके। तो थोड़े आराम आराम से बोलते रहे ऐसे करके। तो वो भी वो फिर शंकराचार्य की फिलोसफी को मायावाद के हम सब भगवान है, हम सब एक हैं और इस प्रकार से बोलने लगा। तो गिरिराज महाराज से फिर रहा नहीं गया और फिर लेफ्ट एंड राइट जो है बिल्कुल उनके फिलोसफी को उन्होंने पूरा स्मैश किया ऐसे करके और बोला जो जो अभी देखी जाएगी। और उसके बाद देखा भी नहीं, उन्होंने बोला चेक क्या साइन करेगा, सीधा प्रभुपाद की बुक्स को उठाया अपने बैग में रखा और रुकने लगे। जब गेट तक पहुंचे तो फिर बोला रुकिए सेट वेट, महाराज वेस्टर्न बॉडीज में है उनको बोला वेट। तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उनको शायद कुछ और रह गया होगा तो बोलेगा अभी। उन्होंने बोला प्लीज कम विद मी कि मेरे साथ आइए। तो लेके गया और फिर अपने ऑफिस के अंदर एक रूम खोला उन्होंने। और जब रूम खोला तो देखा वहां पे राधा कृष्ण के बहुत सुंदर विग्रह थे ऐसे करके। तो और गिरिराज महाराज ने देखा, प्रणाम किया और बोला आई वाज जस्ट टेस्टिंग यू ऐसे करके। उस व्यक्ति को बोला कि आई एम ऑल्सो डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, आई वाज जस्ट टेस्टिंग यू कि मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूं लेकिन मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। क्योंकि तो और जितने भी लोग हैं वो सब इस मायावाद सिद्धांत के आगे झुक जाते हैं ऐसे करके, लेकिन यू आर द फर्स्ट वन जिससे मिला हूं जिसने मायावाद सिद्धांत को जो है बिल्कुल खारिज कर दिया। और तभी उसने चेकबुक साइन कर दिया टू कॉल प्रभुपाद बोल। और एक्चुअली इससे जस्ट पहले गिरिराज महाराज ने प्रभुपाद जी को पत्र लिखा था, तो गिरिराज महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उनका विश्वास बढ़ गया कि नहीं अब खंडन कर रही है मायावाद सिद्धांत, जब भी आएगा आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज। उनसे कुछ टाइम पहले इस दुविधा में जब वो थे कि खंडन किया जाए या सॉफ्ट रहा जाए इंडिया के अंदर, उन्होंने प्रभुपाद को अपनी दुविधा लिखी थी कि वॉट ही स्टैंड टू बी विद मायावाद फिलोसफी। तो प्रभुपाद जब वो वापिस मंदिर पहुंचे या जहां पर रुके थे गेस्ट हाउस वगैरह, तो वहां प्रभुपाद का रिप्लाई आया था। और प्रभुपाद ने रिप्लाई में लिखा था एज फार एज मायावाद इज कंसर्न इट शुड बी टोटली स्मैश्ड, एक्चुअली आई एम द ओनली वन हु इज प्रीचिंग सो बोल्डली अगेंस्ट दिस मायावाद। प्रभुपाद कहते हैं कि इस माया सिद्धांत का तो पूर्णतः खंडन कर देना चाहिए और एकमात्र मैं ही हूं जो इस मायावाद सिद्धांत को पूर्णतः खंडन कर रहा है। क्यों? क्योंकि मायावाद सिद्धांत प्रभुपाद अगले अंग लिख रहे हैं उनके सिद्धांत के कारण सामान्य लोग नास्तिकता की ओर प्रवृत्त हुए हैं। तो क्या है मायावाद सिद्धांत? अलग अलग प्रकार के रूप हैं और मध्वाचार्य ने भी इसलिए लिखा था मायावाद षड भूषणी ऐसे करके 100 श्लोक 100 वर्सेस रिफ्यूट मायावाद।
और हम सब देख सकते हैं हम सबके व्यवहारिक जीवन के अंदर हमारे हृदय के अंदर कुछ न कुछ सूक्ष्म स्थूल रूप से मायावाद छिपा रहता है। तो यहां पर लिख रहे हैं प्रभुपाद पहला पॉइंट लिख रहे हैं कि मायावादी सभी वस्तुओं को श्री भगवान या परब्रह्म के तुल्य मानते हैं, फलतः वे प्रत्येक वस्तुओं को पूजनीय बताते हैं। तो ऐसे लोग सबसे पहला जो खंडन जो आरोप लगाने वैष्णव के ऊपर वो ये है कि भगवान तो सर्वत्र विद्यमान है, भगवान गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इज ओमनी प्रेजेंट ओमनी पोटेंट, भगवान सब शक्तिमान है, सभी कण कण में विद्यमान है, तो तुम यह मूर्ति पूजा क्यों करते हो, मंदिर के अंदर क्यों जाते हो, है कि नहीं, भगवान तो सबके हृदय में विद्यमान है। तो ऐसा कई लोग आर्गुमेंट करते हैं मंदिर जाने की क्या जरूरत है, भगवान तो सब दिशा के अंदर है। और कई बार ऐसा कोट करते हैं वो कि जो प्रॉफिट मोहम्मद जब यहां गए थे मक्का में, तो जिस तरफ उनका श्राइन होता है होली श्राइन, तो उसी तरफ पैर रख के बैठे हुए थे वो, तो सभी लोगों ने बोला था भाई तुम यहां पैर रख के भी बैठे हो इस तरफ, ये तो दिव्य श्राइन मतलब उनका वर्शिप प्लेस, मतलब मुकरमा से करके कुछ बोलते हैं कि मतलब उनका टोम है, तो इस तरफ पैर रखना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ऐसा लोग आरोप करते, तो उन्होंने बोला कि अरे मैं तो सब जगह देख रहा हूं होली श्राइन को, होली टोम को हर जगह देख रहा हूं, तो किस तरह पैर नहीं करूं, है कि नहीं। और जब जिन लोगों ने आरोप किया था वो भी देखा, उन्होंने सब जगह दिखाई पड़ने लगा होली श्राइन, तो समझ आ गया कि ये बहुत ही सिद्ध व्यक्ति है, रियली प्रॉफिट है, कोई मजाक है, मतलब कोई ढोंगी संत नहीं है। तो ऐसे जो सिद्ध पुरुष हो सकते हैं उनके लिए बात ठीक हो सकती है कि सब जगह वो भगवान को देख सके कण कण के अंदर। प्रेमानंद सुनते भक्ति विलोचन है ना संत सदैव हृदय शुभ लोकयंती यम शाम सुंदर अचिंत गुण स्वरूप गोविंद हमारे पुरुषम तम हम भजाम। बट सामान्यतया हम सड़क में पत्थर देखें तो पत्थर को भगवान की मूर्ति समझ के पूजा नहीं कर सकते हैं, कि चट्टान को देखें किसी मार्बल को देखें आप मार्बल की दुकान पर जाओ बोलो सब भगवान है और फिर पूजा करना शुरू कर दो, तो ये बिल्कुल गलत ऐसे करके, है कि नहीं। हाँ उसी मार्बल से जब भगवान के विग्रह बनाए जाए उनकी प्राण निष्ठा हो जाए तब पूजा करने में भगवान रहेंगे, तब वो मार्बल नहीं रहेगा ऐसे करके, यही पिछले श्लोक में भगवान ने पुष्टि की है। तो मायावाद सिद्धांत यही कहता है कि आपको हर वस्तु पूजनीय है उसकी पूजा करो, अर्थात हर बिल्डिंग जो है मंदिर और दूसरी बिल्डिंग में कोई खास भेद नहीं है ऐसे करके, तो दैट इज वन प्रॉब्लम। और इसी प्रकार से हर वस्तु को और बोलते हैं हर कण कण में परमात्मा है या हर व्यक्ति के हृदय परमात्मा है, तो तुम मैं बाहर आडंबर क्यों करते हो, इतना जोर सड़क पर कितना निकालते हो, भक्ति तो मन का हृदय विषय है कि नहीं, अंदर का विषय है, कितना अंदर है उनको भी नहीं मालूम उनका भक्ति चल रहा है ऐसे करके, लेकिन वो बोलते जरूर ऐसे करके, मन चंगा तो कटौती में गंगा ऐसे बोलते हैं, ना कटौती में गंगा है ना उनका मन चंगा है, लेकिन बोलने के लिए ठीक है सब ऐसे करके। तो ये एक मायावाद सिद्धांत है, और इसी सिद्धांत के कारण ये ऐसे फिलोसफी निकाल दें दरिद्र नारायण रोगी नारायण, है कि और अनेकों अनेकों प्रकार के जो है उल जरूर सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं वहां ऐसे करके कि दरिद्र नारायण प्रभुपाद बोलते हैं अरे नारायण लक्ष्मीपति है वो कभी दरिद्र हो गए, है कि नहीं। लेकिन गरीब आदमी को जो है वो नारायण बना देते हैं कि इसके जो प्रभुपाद आगे से खंडन करते हैं प्रभुपाद ने, तो पहला सिद्धांत प्रभुपाद ये बता रहे हैं है ना कि मायावाद सिद्धांत लोग क्या करते हैं, वो प्रत्येक वस्तु को पूजनीय बताते हैं, तो वो पूजनीय है लेकिन इसलिए पूजनीय नहीं है क्योंकि हर वस्तु भगवान है, इसलिए पूजनीय नहीं है, वो इसलिए पूजनीय है क्योंकि वो भगवान की शक्ति है। ये वैष्णव सिद्धांत है प्रभुपाद यूटिलिटी द प्रिंसिपल। तो जो वैष्णव का जो दृष्टिकोण होता है वो ये नहीं होता है कि हर वस्तु भगवान है या प्रत्येक व्यक्ति भगवान है, उसका दृष्टिकोण होता है कि हर वस्तु भगवान की है, इसीलिए भगवान की सेवा में उसको लगाना चाहिए। ये वास्तविक तरीका है एक वैष्णव का जो है उस प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक जीवात्मा को आदर दिखाने का। जय श्री गंगा जय सुभद्रा महारानी की, श्री श्री राधा राधिका भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौरदा की जय, श्री प्रभुपाद की पिता गौर प्रेम। तो जो है कि प्रत्येक वस्तु भगवान की, इसीलिए से भगवान की सेवा में जोड़ना चाहिए। प्रभुपाद जो ध्यान दिया करते थे, जैसे मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और आपको एक पर्स मिला, एक वॉलेट जो सड़क पर गिरा हुआ मिला, तो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार से उसको डील करेंगे। जो कर्मी होंगे वो क्या सोचेंगे, आज तो भगवान की बहुत विशेष कृपा हो गई है कि नहीं, इस सड़क पर एक वॉलेट जिसमें 10,000 रुपए है मिला है मुझे, तो मेरे भोग के लिए मिला है, मैं उसे भोग करता हूं। जो 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 इम्पर्सनलिस्ट होंगे या निरुशवादी होंगे वो सोचेंगे अरे तो माया है, इसको पढ़ रहना ही पड़िए, साइड में उठा के क्रैक ग्रह से करके ब्रह्म सत्यम तगन मिथ्या सब माया है। लेकिन जो भक्त होंगे, जो वैष्णव होंगे, वो कैसे देखेंगे, वो देखेंगे कि अभी किसका है ये वॉलेट, उसका नाम देखेंगे, आइडेंटिटी देखेंगे, उसको पहुंचा दे रहे इसके मालिक को। तो ऐसे ही जो है जो कर्मी लोग हैं प्रभा बताते हैं कि दुनिया में जब देखते हैं कोई भी वस्तु को तो सोचते हैं मेरे भोग के लिए इसे भोग कर लेता हूं, ऐसे करके जो पर्सनलिस्ट होते हैं या मेरे विशेष सुनने वाले वगैरह होते हैं तो वो बोलते हैं अरे छोड़ो इसको सब माया है माना है। लेकिन जो भक्त होता है वो जानता है क्या कि ये सभी वस्तुएं और साथ ही साथ मैं भी जो हूं भगवान का, चाहे मेरा शरीर क्यों ना हो, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, जो कुछ भी देखता है उसे भगवान से संबंधित देखता है। निर्बंधा कृष्ण संबंध युक्तम वैराग्य मुच्यते, अनासत्य से विषय यथा हम उपयुंजते, निर्बंध कृष्ण संबंध युक्तम वैराग्य मुच्यते, कि निर्बंध कृष्ण संबंध कि हर प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित देखते हैं, हरि संबंधी वस्तु न, कि सब वस्तु जो है भगवान की है और भगवान की सेवा में उसको लगाना ही वास्तविक उस प्रत्येक वस्तु को यथारूप आदर दिखाने के समान है। अब इसके अंदर सब लोग एक चीज और भी जो करते हैं कि एक बार प्रभुपाद जी मायापुर के अंदर थे तो प्रभुपाद जी के पास एक मायावादी व्यक्ति आया और बोलते प्रभुपाद व्हाई डू डिस्क्रिमिनेट, यू शुड बी समदर्शी, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गभ्यास्तिनी शुनि चय वर्ष भाग्य चाह पंडित असमदर्शी न, कि आपको समदर्शी होना चाहिए है कि नहीं, बस सब एक है तो एक जैसे देखना चाहिए। प्रभुपाद ने बोला कि नो नॉट एवरीथिंग इज नॉट वन, दे आर ऑल इंडिविजुअल। तो उसने बोला कि जो है तो उसने बोला प्रभुपाद आपको समदर्शी होना चाहिए। प्रभुपाद ने बोला नहीं हमें समदर्शी नहीं होना चाहिए। तो वो थोड़ा गर्म होने लगा, प्रभुपाद जी फिर अपने रस में आने लगे, उनके साथ में जो है प्रभुपाद बहुत अच्छे चलाने लगे और गीता के श्लोक का कोट करने लगे। तो सब शिष्यों ने देखा है क्या हुआ, फिर प्रभुपाद बोलते हैं यस आई एम समदर्शी, बोले कि मैं भी समदर्शी हूं, कहते क्योंकि मैं बिना किसी भेदभाव से सबको प्रचार कर रहा हूं, इसलिए मैं वास्तविक समदर्शी हूं कि मैं हर किसी को बिना भेदभाव के प्रचार कर रहा हूं, स्वयं समदर्शी मैं जो हूं सबको एक ही दृष्टिकोण से देख रहा हूं, मैं भेदभाव नहीं कर रहा, ये कृष्ण शिक्षा कृष्ण ज्ञान देने के अंदर ऐसे करके जो भी आ रहा है उसको मैं कृष्ण नाम कृष्ण शिक्षा दे रहा हूं। और हम देखते हैं वैष्णव समाज के अंदर भी लोग बोलते हैं प्रभु सब भक्त हैं, क्या फर्क पड़ता है, ये मायावाद का एक बहुत ही एग्जैक्ट मायावाद तो नहीं कह सकते, उसका एक रिफ्लेक्शन 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 आभास जो है हम वैष्णव समाज के अंदर देखते हैं कि हमें भक्तों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, है कि नहीं, भक्तों भेदभाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, भेदभाव तो है ही है, बिल्कुल स्वाभाविक है भेदभाव है ही है, कैसे भेदभाव करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। भेदभाव का मतलब ये नहीं कि हम किसी का अनादर करें, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन उसका यथारूप उसका आदर करना चाहिए, ये मतलब भेदभाव का मतलब ये नहीं है कि एक का आदर ज्यादा किया जाए दूसरे का आदर अनादर किया जाए, ये नहीं है, वैष्णव रिस्पेक्ट एवरीवन, बट स्टिल उसकी सोशल हिज एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हिज पोजिशन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज रिस्पेक्टेड, ऐसा करके। और रूप गोस्वामी जो है नेक्टर ऑफ सेक्शन के 5 श्लोक में बता रहे हैं कृष्ण गिरीतम मन साध दीक्षा चेत प्रणति भिष्य भजन तमीशम शुश्रूषया भजन विद्यम अनन्यम अन्य निंदा दिशून्य हृदमीप्सित संग लभ्य। तो रूप गोस्वामी खुद 3 श्रेणी के भक्त बता रहे हैं वहां पे, कनिष्ठ श्रेणी के भक्त, मध्यम श्रेणी के भक्त और उत्तम श्रेणी के भक्त, किस प्रकार से उनके साथ आचरण करना चाहिए ऐसा करके। लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि किसी भी जीवात्मा या किसी भक्त तो थोड़ी किसी भी जीवात्मा का अनादर किया जाए, ऐसा नहीं लिखा उन्होंने ऐसा करके। तो भेदभाव का मतलब ये हो सकता है कि जो बहुत वरिष्ठ भक्त हैं उनका आदर सत्कार करें, उनसे श्रवण करें। जो थोड़े कम श्रेणी के भक्त हैं तो या जो प्राकृत भक्त हैं तो उनका मन से आदर करें या उनका आदर करें शारीरिक रूप से, और जो गणित श्रेणी के भक्त हैं उनका जो मन से आदर किया जाए। इस प्रकार से डिफरेंट लेवल्स ऑफ डीलिंग्स कैन बी डेयर विद हिम। जैसे प्रबोधान दे रहे हैं कि मनुष्य के रूप में हो चाहे वो शेर के रूप में हो, आत्मा दोनों के अंदर है, तो क्या दोनों एक है? एक है या अलग है? कैसे अलग है? दोनों जीवात्मा है, दोनों इंडिविजुअल सोल है ना। अपने कर्मों से शरीर प्राप्त हुए हैं, मनुष्यों के साथ हम टेम्पल वाले बैठ सकते हैं। एक शेर को जाएंगे तो हम सारे फायदे हैं, केवल शेर ही यहां पर रहेगा, है कि नहीं? तो हमारा बर्ताव अलग होगा। मनुष्य को देख के वैष्णव को देखेंगे तो प्रणाम करेंगे, है कि नहीं? शेर को देखे प्रणाम नहीं करेंगे, शेर को देखे हम भी भागेंगे और शेर हमारे पीछे भागेगा शायद, हो सकता है कि नहीं? तो डिफरेंस नेचुरली है, डिफरेंसिएशन नेचुरली है, हम अलग अलग हैं। और यही इंडिविजुअलिटी कृष्ण भगवान गीता के दूसरे अध्याय के बारे में श्लोक बता रहे हैं, न तो हम जातो नाशन नौतो नहीं जना दे पाना चाहिए भविष्य हमारा सर्वे भयता पर, कि हम सब हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। ये सब राजा मैं और तुम जो है सभी इंडिविजुअल हैं ऐसे करके। तो मायावाद सिद्धांत भी बहुत ही बकवास सिद्धांत है कि हम सब एक हैं ऐसे करके, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत डेंजरस है इस मायावाद सिद्धांत के। इस सिद्धांत के बल पर पापा लिख रहे हैं, ये दूसरा पॉइंट पापा लिख रहे हैं, इस सिद्धांत के बल पर प्रत्येक व्यक्ति अपने को ईश्वर समझता है जो सत्य नहीं है। On the strength of this theory, one thinks that he is God, but this is not a fact. The fact is that the entire cosmic manifestation is the expansion of the Supreme Lord's energy, which are manifested in the physical elements and the living entities. Vastavikta to yah hai ki samast drishya jagat Ishwar ki shaktiyon ka prasar hai. Arthat गीता के 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में बता रहे हैं, मया तथा इदं सर्वं जगत अजगत मूर्तिनां मत्स्यानि भूतानि न चाहंतेष्व अवस्थितः। प्रभावित श्लोक को भाग के अंदर कोट करते हुए बता रहे हैं, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो यहां पर बता रहे हैं, तो ऐसी ये सच घटना है कि प्रभावित एक बार ट्रेवल ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे। अभी किसी भक्त को सुना, हमने अभी किसी मतलब प्रभुपाद के शिष्यों की बुक में पढ़ा नहीं है ना लीलावत में पढ़ा है, लेकिन सुना है। अभी उदाहरण के तौर पर अगर बहुत घटे हैं, सिर्फ इसके जो शिक्षा है वो महत्वपूर्ण है। तो एक ऐसे ही व्यक्ति उनको मिला और बोला कि हम सब भगवान हैं, वी आर गॉड। तो प्रभुपाद ने बोला नो, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, हम भगवान के अंश हैं, भगवान नहीं है। मतलब वी आर ऑल वन, एक ही बात है जो है। तो प्रभु ने बोला अंश है, अभी सर्दी के दिन चल रहे हैं, उस समय सर्दी चल रही थी। तो प्रभु ने कंबल में से एक धागा निकाला और बोला ये कंबल क्या, कंबल और आप कह रहे हम सब एक हैं, भगवान उनके अंश में कोई अंतर नहीं है, तो इस कंबल और कंबल के अंश धागे में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। बोला प्रभु बिल्कुल नहीं अंतर। तो बोले ठीक है, आज आप तो आपके धागा और किसको जाओ, कंबल और धागे में कोई अंतर तो है नहीं, है कि नहीं? तो रात में जब कि छुटू रहा मेरा नहीं, मेरे कंबल दो। प्रभुपाद बोले नहीं, तो भगवान हम सब वी आर पार्ट ऑफ गॉड, पार्ट इज नॉट गॉड, ऐसा करके वी आर ऑल इंडिया, वी आर पार्ट एंड पार्सल, वी आर नॉट होल। तो वो माना वापस शक्ति ऐसे करके कि हाँ जो है हम सब जो है भगवान के अंश हैं, भगवान नहीं है, लेकिन कंबल और कंबल का धागा अलग अलग चीज है दोनों, ऐसे करके वैसे ही हम लोग जो है। तो ये समस्या है इसके साथ में कि जो है वास्तविकता यह है कि समस्त दृश्य जगत ईश्वर की शक्तियों का प्रसार है। ये शक्तियां भौतिक तत्वों का जीवात्माओं के रूप में प्रकट होती हैं। तो भगवान की गीता में 7वें अध्याय में बता रहे हैं, भूमिरापनलो वायु कंपन बुद्धि रे वच अहंकार इति यम भिन्न प्रकृति दृष्टा अपरियमित स्वयं प्रकृति वृद्धि में परम जीवभूत महाबाहु यही दंधारित जगत। वो बोल रहे हैं भगवान की क्या है, इन्फिनिट एनर्जी यानी जड़ भौतिक प्रकृति जो है ये 8 तत्वों से बनी हुई है, भूमि मनो वायु मनो बुद्धि अहंकार, 5 स्थूल तत्व और 3 सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि अहंकार पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और भगवान की शक्तियां क्या है, दूसरा जीव जीव भूत महाबाहु यही दमधारियते जगत। और जो भगवान की जो सुपीरियर एनर्जी है या तटस्थ शक्ति है वह जीवात्मा है। तो एक और बता रहे हैं कि वास्तविकता यह है ये शक्तियां भौतिक तत्वों तथा जीवात्माओं के रूप में प्रकट होती हैं। अर्थात जितना जड़ पदार्थ हम देखते हैं और जो चेतन जीवात्माएं हैं, ये दोनों वास्तविकता भगवान की शक्तियां हैं। ऐसे करके हम भी भगवान की शक्ति हैं और जितने हम पदार्थ देख रहे हैं अपने आसपास वही भगवान की शक्ति है, ऐसे करते हैं। तो ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। अब क्योंकि ये भगवान की शक्ति है, इसका मतलब ये नहीं कि ये भगवान हो गए। अब प्रभु ऐसा उदाहरण इस तात्पर्य में दे रहे हैं गीता के, कि मैं सर्वत्र हूं और प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु मुझमें तो भी मैं पृथक हूं। उदाहरण प्रभु ने एक बहुत मोटा उदाहरण है, ग्रॉस उदाहरण है। राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्रकट्य होता है, ये मैनिफेस्टेशन होता है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा के शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर रहता है, तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। कि जिस प्रकार बहुत सारे डिपार्टमेंट है मान लीजिए एक देश के अंदर, तो वो सब कुछ प्राइम मिनिस्टर के अधीन होकर चल रहे हैं, उसकी शक्ति के अंतर्गत है। कोई चाहे तो किसी भी डिपार्टमेंट में कुछ भी कर सकता है, ऐसे करके। बट इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, वो हर विभाग के अंदर खुद प्रेजेंट नहीं है, ऐसे करके। कि भाई रेलवे डिपार्टमेंट वही क्लरिकल काम कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में वही काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता। लेकिन है हालांकि उन्हीं की शक्तियां। ऑफकोर्स राजा के अंदर यह शक्ति नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के अंदर यह शक्ति नहीं है कि वो अंडा अंतरस्त परमाणु चयांतरस्त कि वो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर उस रूप में मौजूद हो। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि एक मोटा सा उदाहरण है, इट्स अ ग्रॉस एग्जाम्पल। वैसे ही भगवान भी, हालांकि वो भी हर वस्तु के अनादि आदि गोविंद, हर वस्तु के सर्व कारण कारण अल्टीमेट कारण वही है, लेकिन फिर भी कृष्णा सेपरेट ना होना, ये कृष्ण की विभिन्न विभिन्नांश है, सेपरेट एनर्जी है, ये कृष्ण नहीं है। तो ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। जितने पदार्थ हैं और सभी जीवात्माएं हैं, ऐसे करते। और इसीलिए लॉर्ड इसीलिए क्योंकि हमारे दृष्टि जो है वो पदार्थ से वो देखने के लिए जो है सक्षम है या ट्रेंड है या फिर अट्यून है एक प्रकार से। इसे लॉर्ड इज नॉट अवेलेबल, लॉर्ड इज नॉट विजिबल टू फिजिकल सेंसेस। भगवान जो है हमें इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम उन्हें नहीं देख सकते या उनका उनकी उनको नहीं जो है समझ सकते। तभी बताया गया है अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद गायम इंद्रिय सेवा मुखे ही जीवाद स्वयं सूरत याद। कि भगवान जो है इस स्थूल इंद्रियों से जो है विकर्म रियलाइज, अतः श्री कृष्ण न भवेद गायम इंद्रिय। इसीलिए जब हम सेवा मुखे जीवाद स्वयं सूरत, जब हमारी इंद्रिया जो है भगवान की सेवा में लगाने से धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे, तब हम भगवान का जो है रियलाइज कर पाएंगे। प्रेमांजलि भक्ति विलोचन न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। लॉर्ड इज नॉट विजिबल टू ग्रॉस सेंसेस, ऐसे करके। तो ये जितना जगत हम देख रहे हैं, चाहे हम सब हो, सभी बद्ध चाहे नित्य जीवात्मा है चाहे वो जड़ पदार्थ, ये सब भगवान की शक्तियां हैं, ऐसे करके। अब तीसरा वर्ड भगवान लिख रहे हैं कि ठीक है जो है पहली गलती तो मायावाद क्या करती है, हर वस्तु को भगवान की शक्तियों को भी भगवान के समान ही देखती है, तो पहली गलती है, इसीलिए लोग अपने आप को भगवान मानने लगते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि सभी जड़ पदार्थ और जीवात्मा भगवान की शक्तियां हैं वास्तविकता, लेकिन अगर भगवान से पृथक है, ऐसा करके भगवान से अलग है वो। लेकिन अब क्योंकि जड़ पदार्थ और जड़ पदार्थ जो है भगवान की इंफीरियर एनर्जी है और जीवात्मा सुपीरियर एनर्जी है, लेकिन उससे भी ऊपर क्या है, भगवान स्वयं या भगवान की जो इंटरनल पोटेंसी है, ऐसे करके मैटर द लिविंग एंटिटी एंड देन द इंटरनल पोटेंसी। भगवान की जड़ जो जो भौतिक बहिरंगा शक्ति है, भगवान की तटस्था शक्ति है और उसके ऊपर क्या है अंतरंगा शक्ति, ऐसे करके। तो जो है जीवात्मा भ्रमवश समस्या क्या है, क्योंकि वो मैटर के सुपीरियर है, जड़ पदार्थ के सुपीरियर है, तो जीवात्माएं भ्रमवश यह मान बैठती है कि भौतिक तत्व उनके भोग के लिए है और वे अपने को उनका भोक्ता मान बैठती है। तो जीवात्मा बिकॉज सुपीरियर जो लिविंग एंटिटी है, सुपीरियर टू द मैटर, तो वो सोचता है कि आई एम द टॉप नो आई एम द सुप्रीम। ये गलती है बहुत बड़ी, ऐसे करके कि भाई ठीक है जैसे मान लीजिए ये मैटर है, तो इस मैटर को मैनिपुलेट कर सकता हूं, अभी यहां रखा था मैंने एक कर्तल को यहां रख दिया, कर्तल को यहां रख दिया, माइक स्टैंड को मैंने ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया, मेरे कंट्रोल के अंदर है, इस डायरी को उठा के मैंने यहां से यहां रख दिया, मैं इसके जो है तो विकल्प है कि भगवान ने जीवात्मा को शक्ति दी है कि मैं मैटर को मैनिपुलेट कर सकता हूं, तो मेरे अंदर कुछ शक्ति है और मैं इस जड़ पदार्थ से सुपीरियर हूं, कैसे करके इन भौतिक पदार्थों से सुपीरियर हूं। तो इससे भ्रमवश द इल्यूजन इज क्रिएटेड कि दीज रिसोर्स आर मेंट फॉर माई एंजॉयमेंट, कि ये जो जड़ पदार्थ है ये मेरे एंजॉयमेंट के लिए, ऐसे करके ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। ये प्रभा लिख रहे हैं एंड दे थिंक देमसेल्फ टू द एंजॉयर्स, और वे अपने को भोक्ता मान बैठते हैं। ये गलती जो बद्ध सी बात ना, इसलिए वो मार्जिनल पोटेंसी है, वो भ्रम मान बैठती है। और ये एक कारण है जिसके द्वारा हम अनेकों अनेकों जन्मों तक इस बद्ध जीवन, इस बद्ध भौतिक संसार के अंदर जो है जीवात्मा पड़े रहती है। ऐसे करके कि लिविंग एंटिटी शुड अंडरस्टैंड कि मैं और ये जो जो जीवात्मा है, मार्जिनल पोटेंसी और जो ये बहिरंगा शक्ति जड़ पदार्थ है, ये दोनों वास्तविकता भगवान की अंतरंगा शक्ति के सेवा में लगने के लिए है और भगवान के सेवा में लगने के लिए है, ना कि इनको एंजॉय करने के लिए। क्योंकि इनका निर्माण किया था, इन सबका निर्माण, चाहे वो अंतरंगा शक्ति हो, चाहे वो बहिरंगा शक्ति हो, चाहे वर्षा शक्ति हो, अर्थात जड़ पदार्थ और जीवात्मा हो, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो, इन सबका निर्माण भगवान ने क्यों किया था? अपने आनंद के लिए। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुना युग दधाति कामना, कि भगवान ने अपने आनंद की पूर्ति के लिए, आनंद की पूर्ति नहीं, आनंद के को बढ़ाने के लिए, योग दधाति कामना टू इंक्रीज द ब्लेस, कृष्णा एक्सपांडेड हिमसेल्फ इनटू सो मेनी पार्ट्स बेसिकली, चाहे वो सेपरेटेड हो, चाहे वो स्वांशु चाहे विभिन्नांश हो, ऐसे करके चाहे वो योग माया हो, चाहे महामाया हो, अंतरंगा शक्ति हो, चाहे बहिरंगा शक्ति हो, चाहे तटस्थ शक्ति हो। तो गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग फॉर हिज एंजॉयमेंट, नॉट फॉर अवर एंजॉयमेंट, ऐसे करके, है ना। तो ये एक बहुत बात है, लेकिन भ्रम क्या होता है, गॉड हैज क्रिएटेड एवरीथिंग फॉर अवर एंजॉयमेंट, कि भगवान ने सब कुछ हमारे आनंद के लिए जो है ये सब क्रिएट किया है, ऐसे करके। तो जैसे जो एक जीवात्मा है वो बाहर देखेगा, जहां भी देखेगा उसके लिए कैसे उसको एंजॉय कर लो, कैसे इसको एंजॉय कर लो, ऐसे कर, अधिकांश जगह यही होता है। और जब उनको बोला जाता है कि आप जो हो सेवक हो, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है और दुख लगता है, ऐसा करके। तो इसके लिए जो है एक भक्ति श्राम ठाकुर एक कथा बताते हैं कि जब लोगों को ये बताया जाता है कि आप जो हो सेवक हो, तो उनको बहुत समस्या हो जाती है, ऐसे करके। तो एक बारी एक टीचर और एक माता जी होती है, तो उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक मैथ्स के टीचर को ट्यूटर रखा था। तो जब वो ट्यूटर घर में आए तो ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे लड़के को, तो ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे, तो ज्योमेट्री के नाम सब पढ़े होंगे, ट्राइंगल होगा तो एबीसी, या स्क्वायर होगा तो एबीसीडी, पेंटागन होगा तो एबीसीडी, कोऑर्डिनेटर नंबर्स। तो उस माता जी बाहर खड़े होकर सुन रही थी, बोले तो एबीसीडी पढ़ा रहे हैं बच्चे को, है कि नहीं। उनका पता था ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, उनको लगा कि एबीसी पढ़ा रहे हो, बोले मैं तुम्हें जो हूँ 400 रुपए घंटा दे रही हूँ एबीसीडी पढ़ाने के लिए बच्चे को, और बहुत थोड़ी लोग आप बुला होगा, बोले ये तो फर्स्ट क्लास में पढ़ा हुआ था, अभी सिक्स क्लास के अंदर आ गया और तुम एबीसीडी पढ़ा रहे वैसे, और उस ट्यूटर समझाने की कोशिश कर रहे हैं एबीसीडी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, ऐसे करके। लेकिन माता जी इतना गुस्सा हो गई, उसको निकाल दिया बाहर, ऐसे करके, है ना। तो कोई सुना भी नहीं था तर्क को। तो भक्त ठाकुर ऐसे बताते हैं कि जो कि जिन लोगों को अनुभव है इस भौतिक दुनिया के अंदर सेवा करने का या सेवक बनने का, बहुत ही कड़वा अनुभव है, ऐसे करके। इस भौतिक दुनिया के अंदर कोई भी जो सेवक बन के रहा होता है, दास बन के रहा होता है, दास का मतलब भौतिक रूप में क्या है, स्लेव, है कि नहीं। मतलब हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है नौकर का, वो ये होगा जो हमारे घर में बर्तन साफ करने वाली या गाड़ी साफ करने वाला व्यक्ति आता है, जल्दी ऐसा कंसेप्शन होगा। इसीलिए हमें से कोई नौकर नहीं बनना चाहता, दास नहीं बनना चाहता, ऐसे करके, है कि नहीं। तो इस भौतिक जगत के अंदर जैसे व्यक्ति ने भी सेवक बनने का प्रयास किया, उसका बहुत ही जो है कड़वा अनुभव है। तो जो सेवक बन चुके हैं उनको लगता है कि वी हैव बिकम टोटली वर्थलेस बाय बिकमिंग सर्वेंट, कि हम सेवक बनकर जो है हमारा, हम जो है बिल्कुल हमारा कोई उपयोग ही नहीं रह गया, हम बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। और अगर भक्ति करके हमें दास ही बनना है तो क्या फायदा होगी, है कि नहीं? भक्ति करके, अरे भाई जब आपको 6-7 पर आगे इविजिली करना है तो 6-7 पर आएंगे, है कि नहीं? तो ऐसे ही करके, तो अरे आप चाहे कितना भी लर्नर पर्सन हो, वो आगे एबीसीडी को जो है उनके इंट्रिकेट डिजाइन को पढ़ेंगे, उनके इंट्रिकेट जो है अरेंजमेंट्स को पढ़ेंगे, ऐसे करके सर कितना पढ़ा लिखा करके पीएचडी ओवर एबीसीडी थोड़ी बंद हो जाएगा इसके लिए, है कि नहीं? ही विल गो इन मोर एंड मोर रिफाइंड वेज ऑफ दैट। तो ऐसे ही क्योंकि इसका हमारा भौतिक जगत में जो है अनुभव बहुत कड़वा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दासता को छोड़ दें, जो एबीसीडी है दासता की दासत्व की भावना इसको छोड़ दें, जीव कृष्ण क्या है कृष्ण जीवन अनुभव कृष्ण के दास ऐसे करके है, तो वो गलत है। उसे दासत्व को स्वीकार करते हुए हम जब भगवान की दासत्व को स्वीकार करेंगे, साधना भक्ति भाव भक्ति और प्रेम भक्ति अचीव करेंगे, तो हम उसी एबीसीडी को इस्तेमाल करेंगे एक प्रकार से, तो उसी दासत्व को हम स्वीकार करेंगे। लेकिन ग्रेजुअली वो क्या है, वो प्रेम भक्ति विकसित होगी यहां पर कि वो भगवान जो है उसमें भक्ति के अधीन हो जाते हैं ऐसे करके, है कि नहीं? लेकिन लोगों की दासत्व का बहुत दरवा अनुभव, इसलिए दासत्व को ही छोड़ देते हैं कि ये बेकार है ऐसे करके। तो ये प्रभु से हम बता रहे हैं, द लिविंग एंटिटी रॉन्गली कंसीडर द फिजिकल एलिमेंट्स टू बी रिसोर्सेज मेंट फॉर देयर एंजॉयमेंट एंड दे थिंक देमसेल्फ टू बी एंजॉयर्स, ऐसे करके। तो ये जो है एंजॉय करने की भावना हमारे अंदर ये मायावादी सिद्धांत जो है प्रस्तुत करती है, ऐसे करके। फिर चौथा जो है फिलोसॉफिकल माइंड प्रभु बता रहे हैं यहाँ पे, हाउएवर नेदर ऑफ देम नेदर लिविंग एंटिटीज नॉर मैटर इज इंडिपेंडेंट, दे आर बोथ द एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड, the original cause of that for the material energy and spiritual energy is supreme personality of Godhead। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ना तो जीवात्मा ना जड़ पदार्थ दोनों क्या है स्वतंत्र है, दोनों को जो है दोनों परतंत्र है भगवान के नियमों के अधीन, प्रकृति के नियम के अधीन। जैसे हम देखते हैं किसी भी जड़ पदार्थ को, मान लीजिए ये आपने कोई भी वस्तु ली और प्रकृति का नियम क्या है गुरुत्वाकर्षण, छोड़ेंगे तो क्या होगा वो तो नीचे गिरेगा गिरेगा, और हम देखते हैं सारे पदार्थ इसका पालन करते हैं, तो कोई पदार्थ जो है स्वतंत्र नहीं है। ऐसे ही मैटर जो है 6 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है, बर्थ ग्रोथ मेंटेनेंस देन प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स डीके एंड देन फाइनली डेथ। ये 6 प्रकार में, हिंदी में तो सारे शब्द नहीं है मेरे इसके, पर ये 6 प्रकार का हर मैटर जो है जाता है, किसी कोई लंबे समय तक कोई कम समय तक, कोई कम समय में कोई लंबे समय तक, जो फिजिक्स पढ़े होंगे उनको मालूम है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ करके हम पढ़ा करते थे ऐसे करके, तो टी हाफ ऐसे करके जो है, तो मैटर का हर मैटर का जो है ये 6 ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। तो हम देखते हैं कि सारे जो जड़ पदार्थ हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय सुप्रीम लॉर्ड, नहीं बाय द बाय मीडिया ऑफ मटीरियल नेचर, लेकिन सब प्रकृति के नियम को फॉलो करते हैं। ऐसे ही सभी जीवात्माएं हैं वो भी भगवान से क्या है के नियमों का पालन करते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है उन सबका नियमों का पालन करते हैं सभी जीवात्माएं ऐसे करके। और सभी जीवात्मा जो है वो प्रकृति के और भगवान के नियमों द्वारा नियंत्रित हैं ऐसे करके। तो हम भगवान नहीं बन सकते कि भगवान के नियमों द्वारा नियंत्रित हैं। अब ये मुझे एक कुछ भक्त सुना है हमने कि एक बार एक महाराज जो है सन्यासी मंदिर में थे और अपने शिष्यों के साथ में थे, और एक व्यक्ति उनके पास आया, ये प्रभुपति के सब कुछ शिष्य थे, अभी हमें याद नहीं, हमें पता नहीं कौन एग्जैक्टली, तो इसलिए हम नाम नहीं कोट कर रहे। तो उनका एक व्यक्ति ऐसे आया भागवतम क्लास के बाद बोला, जैसे एक अभी बहुत बता रहे थे मेरे को कि प्रभुपति के सामने से बहुत सारे लोग आते थे जो अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते थे क्लास में, भागवतम क्लास या गीता क्लास के बाद में खड़े होते थे, बोलते प्रभुपाद आई एम स्वामी जी आई एम गॉड। तो एक बार एक व्यक्ति चैलेंज किया प्रभुपाद, प्रभुपाद के तीन असर में हम्बल हुए सेंसेस, प्रभुपाद कहते हैं मेरा धर्म प्राप्त स्वीकार करें। दूसरी बार प्रभुपाद ने ऐसी चैलेंजिंग वे में किया घोषित कि आई एम गॉड, प्रभुपाद सेड नो यू आर डॉग। तो प्रभुपाद अलग अलग प्रकार से जो है रिफ्यूट करते थे। ऐसे ही व्यक्ति आए स्वामी जी के पास और बोला कि मैं भगवान हूं। तो कुछ कुछ देर तो बात करने लगे थोड़ी देर की, नहीं हम भगवान के अंश ऐसे करके, थोड़ा सा शिष्यों को इशारा किया, बोले मंदिर के सारे गेट बाहर से बंद कर दो ऐसे करके, मंदिर के जितने भी गेट टेम्पल हॉल के या बाहर से बंद कर दो, अंदर से ही बाहर से बंद कर दो। तो ठीक है उन्होंने बंद कर दिया सब शिष्य ने बाहर से जाके, थोड़े समय बाद उस व्यक्ति को टॉयलेट जाना था ऐसे करके, है कि नहीं? तो अब वो गया तो देखा 7 दरवाजे बंद है, एक दरवाजे के बाद गया बंद था, फंस गया, बोला मेरे को बाहर जाना था, मेरे को बाहर जाने दो। तो बोला अरे आप तो भगवान है, आपको डॉलर देने का आपको आप कैसे ये जो है प्रकृति के नियमों का अधीन है। तो बोला नहीं अरे मेरे को जाना है ऐसे करके। तो मैं बोला नहीं आप मानो आप भगवान नहीं हो देखो भगवान कैसे नियमों का अधीन आ सकते हैं। तो थोड़ी देर तक और उसने बहस करता रहा। बाद में बोला ठीक है भगवान नहीं मुझे जाने दो। तो शिष्य ने दरवाजा खोला और जब दीदी होके आया वापिस तो बोला ठीक है भगवान नहीं आप मानते बात। बोला नहीं मैं भगवान हूँ। तो बोला ये कहते हैं अभी अभी तो आप देखो सब जो है अपने देखों के अधीन आ गए थे। बोला वो तो मेरी लीला थी। इधर बोलते हमारे वहां सिद्धांत है कि ऐसे करके कि लोग जो है पूर्ण बद्ध होंगे लेकिन अपने आपको मानेंगे कि मैं भगवान हूँ ऐसे करके। तो ये नहीं मानेंगे कि भगवान सर्व कारण कारण अब है लग गया। तो हम देखते हैं ऐसे एक अधीन इंद्र भी जो है यही मेंटेलिटी के अंदर आ गए थे और कुछ हद तक अपने को भगवान को प्रसिद्ध करने वाले ऐसे एक असुर बोल सकते हैं उसका नाम था पॉन्ट्रक कृष्ण लीला के अंदर। ठाकुर भक्तों बताते हैं चेतन शिक्षा के अंदर कि पॉन्ट्रक जो है फॉल्स गॉड बनने की इमिटेटिंग गॉड बनने की जो हमारे अंदर टेंडेंसी होती है लॉर्ड ओवर करने की भगवान बनने की अपनी भगवत्ता सिद्ध करने की। तो पॉन्ट्रक जो है असुर या असुर राजा जो भी था तो वो साबित करते ऐसे करके। तो हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे पॉन्ट्रक होते हैं। रिसेंटली मैं बता रहा था कि मीडिया ने जो है ऐसे अलग अलग सभी भगवानों को जो है मीडिया कवरेज इंटरव्यू के लिए बुलाया ऐसे करके लेकिन किसी को बताया नहीं कि बाकी सब भगवानों को भी बुला रहे हैं ऐसे करके। तो कुल 24 भगवान वहां पे इकट्ठे हुए थे लेकिन इंटरव्यू देने के लिए। तो ये एक विडंबना है मायावाद सिद्धांत की बहुत जो है दुष्प्रचार है मायावाद सिद्धांत का। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे फैक्ट्री आन ओनली वन हुज फाइटिंग अगेंस्ट इन मायावाद ऐसा करके। तो लोगों के अंदर ये भावना बैठी हुई है। और फाइनली प्रभुपाद जो है इस श्लोक के अंत के अंदर जड़ पदार्थ जीवात्मा और अपने प्रति भगवान के प्रति चार प्रकार के मुख्य भेद बता रहे हैं। चार लाइनों के अंदर प्रभुपाद सटीक भाषा से एक जड़ पदार्थ और जीवात्मा और भगवान के बीच का संबंध क्लियर कर रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं एवरीथिंग रेस्ट अपॉन हिम एंड एवरीथिंग इज बट एन एक्सपेंशन ऑफ हिज एनर्जीज की भौतिक प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है और उनकी शक्तियों का विस्तार है कि भगवान की शक्तियों का विस्तार है प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। बट दिस डज नॉट मीन दैट एवरीथिंग इज एज वर्शिपेबल एज द लॉर्ड हिमसेल्फ। किंतु इसका अभिप्राय कदापि नहीं है कि सारी वस्तुएं उन्हीं के समान पूजनीय है। तो यह पहला पॉइंट है कि सब कुछ भगवान पे आश्रित है उनकी शक्तियों का विस्तार है लेकिन उनके समान पूजनीय नहीं है। भगवान भगवान है भगवान के अंश है भगवान शक्ति भगवान की शक्ति है। द मटीरियल एक्सपेंशन इज टेम्पररी बट द लॉर्ड इज नॉट टेम्पररी। जो भौतिक विस्तार है वो क्षणिक है लेकिन ईश्वर क्षणिक नहीं है। जिस प्रकार से भौतिक जगत है ये सब इसका उत्पत्ति होती है प्रलय हो जाता है सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए वयस्य भुवना निविभक्ति दुर्गा। तो इसका सृष्टि होती है साधन अर्थात मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन भगवान के साथ ये नहीं होता। तो द मटीरियल एक्सपेंशन इज टेम्पररी बट द लॉर्ड इज नॉट टेम्पररी भगवान जो है स्थाई है। फिर तीसरा पॉइंट जो बता रहे द लिविंग एंटिटीज आर पार्ट्स ऑफ द लॉर्ड बट दे आर नॉट द लॉर्ड हिमसेल्फ। जो जीवात्माएं हैं ईश्वर के अंश है किंतु वे स्वयं ईश्वर नहीं है। ये भी हम बहुत सामान्य रूप से देखते हैं। कई कई लोग बोलते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं है कि नहीं। ये एक बहुत कॉमन मायावाद सिद्धांत जो हम देखते हैं मायावाद सिद्धांत के रूप के अंदर है कि नहीं। बोले मेरे घर में बाल गोपाल है नंद महाराजेश्वरा माँ के घर में बाल गोपाल थे हर एक के घर में बाल गोपाल नहीं होते है कि नहीं। तो बच्चे भगवान का रूप होते हैं कि नहीं होते हैं भगवान के अंश है लेकिन भगवान का रूप नहीं है। बड़े होंगे तो शैतान का रूप निकलेंगे शायद हो सकता है अगर उनको प्रॉपर भगवत्ता में ट्रेनिंग नहीं मिली तो। बट ये जब हम सुनते हैं या बोलते हैं तो हमें जानना चाहिए कि मायावाद सिद्धांत और कुछ नहीं है वास्तविकता के अंदर जो है कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं ऐसे करके लोग बोलते हैं कि नहीं। तो ये एक सिद्धांत है जो हमें जानना चाहिए भक्तों को जानना चाहिए कि ये करेक्ट सिद्धांत नहीं है। भगवान के अंश हो सकते हैं। तो लिविंग एटीट्यूड आर पार्ट ऑफ द लॉर्ड बट नॉट द लॉर्ड हिमसेल्फ। और चौथा पॉइंट बता रहे हैं द लिविंग एंटिटीज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड आर नॉट इनकंसीवेबल बट द लॉर्ड इज। इस जगत में जीवात्माएं अकल्पनीय नहीं है किंतु ईश्वर अकल्पनीय है या अचित इनकंसीवेबल है ऐसे करके। तो हमारा सिद्धांत क्या है, अचिंत्य भेदा भेद तत्व, कि हम सब जो है भगवान के जो गुणात्मक रूप से एक हैं लेकिन मात्रात्मक रूप से नहीं। लेकिन जब आप ऐसा प्रचार करेंगे लोगों को बोलेंगे तो आपको बहुत समस्या का अनुभव करना पड़ेगा ऐसे करके। जैसे अभी हम भगवत मैराथन कर रहे हैं तो प्रचार कर रहे हैं तो आप सब भक्तों को जो है एक बहुत सारे चैलेंज देखने का मौका प्राप्त हो रहा होगा। कई प्रकार के लोग ऐसा बोलते हैं, ओ माय गॉड, देखा है आपने, आपको प्रचार करेंगे, आप ये मूवी देखो, ओ माय गॉड। दूसरा एक और क्लिप निकाला है कुछ ही किसी प्रकार के धोखेबाज, मतलब क्या कह सकते हैं उसे, लोगों ने जिनका कुछ अल्टीरियर मोटिव है। लेकिन ये जिस प्रकार के जो एंटी प्रीचिंग है कह सकते हैं, दुष्प्रचार है, ये हमारे इस समय नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा है ऐसे करके। पर भक्तिधाम ठाकुर एक बहुत ही रोचक कथा बताते हैं इसके कारण, तो उसके साथ माइंड अप करूंगा। एक बार ये गांव में क्या हुआ, वहां पे लगातार चोरियां हो रही थी। ध्यान तो सुनिएगा क्योंकि समझना इसका तात्पर्य बहुत वो है, डीप है। तो एक गांव में लगातार चोरियां हो रही थी तो लोग से परेशान हो रहे थे, यहां पे बहुत चोरियां हो रही है ऐसे करके, क्या किया जाए। तो और लेकिन चोर का पता नहीं चल रहा, हर तीसरे चौथे पांचवे दिन कहीं ना कहीं चोरी होती थी, डाका पड़ता था। तो उनको समझ भी नहीं आ रहा कि चोर इतनी सावधानी से चोरी करता था कि कोई निशान भी सुराग भी नहीं पता लगता था। उस समय तो सीसीटीवी कैमरा वगैरह होते नहीं थे, तो था भी गांव, आज भी गांव में सीसीटीवी लगे नहीं होंगे। तो गांव में तो उस मुखिया ने जो है उससे सोचा कुछ तो करना पड़ेगा कुछ। तो उन्होंने जिन घर में चोरी हुई थी उन सबको बुला के उनका जो है गुप्त रूप से बयान दिया। तो जब लिया तो उसने देखा कि इन सब चोरियों में एक फलाना व्यक्ति, एक पर्टिकुलर व्यक्ति हमेशा मौजूद था, लगभग हर चोरी में उसका रिएक्शन भी हमेशा सेम सा होता था ऐसे करके। तो उसको बहुत डाउट आता कि ये व्यक्ति हर बार ये चोर तो चिल्लाता भी है और जो है अलग प्रकार से रिएक्ट करता है। और ठीक है, तो उन्होंने जो है एक गार्ड को, एक चौकीदार को उसके ऊपर निरीक्षण रखने के लिए बताया कि 24 घंटे जो है इसके ऊपर जो पीसीआर वैन लगा पेट्रोलिंग के लिए ऐसे करके। तो उन्होंने जो है उस चौकीदार को लगाया, मुखिया ने खुद भी उस चौकीदार को जो है निरीक्षण करते थे कि ड्यूटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है ऐसे करके। जैसे हम भी देखते हैं कई बार चौकीदार आपको सो जाते हैं, है कि नहीं। तो उन्होंने देखा, तो ऐसे ही कुछ दिनों बाद, उसके 5-7 दिन बाद में इस चौकीदार ने देखा कि वो व्यक्ति उसके घर पर निकालने को बोला था। वो रात के लगभग 1-2 बजे के आसपास अपने घर से निकला और एक शॉल डाल रखी थी और शॉल के अंदर एक 2-3 औजार छुपा के रखा जिससे चोरी कर सके। तो उसने धीरे धीरे पीछा किया पीछे से ताकि उसे पता न लगे। फिर देखा कि वह घर में फांद के गया और वहां से सामान चोरी किया और निकल के आया और दूर जंगल में गया और सामान को छुपा के जो है वापिस आ गया। और जब आया तब तक तो घर में शोर मच गया था, अरे चोर 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 पकड़ो, और गार्ड हमेशा जो है वहां दूर से देख रहा था। और इस व्यक्ति ने क्या किया, आके उसी भीड़ में इकट्ठा हो गया और चिल्लाने लगा, चोर चोर चोर, अरे चोरी हो गई, अरे चोरी हो गई, चोर पकड़ो चोर, ऐसे करके। तो और गार्ड में कुछ देख रहा था, इतने मुखिया भी आया। तो जो है मुखिया वहां पर देख रहा निरीक्षण और उसने उस गार्ड सारी, गार्ड ने जाके मुखिया को सारी चीज बताई ऐसे करके कि ऐसे ऐसे केस हुआ है, इस व्यक्ति ने चोरी की है। तो मुखिया ने कहा ठीक है। और तब फिर क्या हुआ, और इस व्यक्ति ने क्या किया, इसने तब तक गार्ड को देखा, भाई गार्ड भी यहां पे है। तो ये गार्ड के पास गया और उसका हाथ पकड़ के बोला, हाथ पकड़ के पास जाके चिल्लाने लगा, ये रहा चोर, पकड़ो इस चोर को, पकड़ो। अच्छा चोर किसको कह रहे हैं, गार्ड को कह रहे हैं ये चोर है। तो लोगों को पता लगा भाई यही चोर होगा, वास्तव में तो गार्ड थी। तो उसको पकड़ के मारने वाले थे, मुखिया ने आके बचाया, अरे भाई ये तो गार्ड है, इसको मैंने बचा के रखा है। और ये कह रहे हैं कि जंगल की ओर चलते हैं, वहां पे जो है चोर ने जो है छुपाया होगा, इस गार्ड का कहना है। तो सबने कहा चलो जंगल की ओर चलते हैं। तो ये गार्ड जो है मुखिया वैसे लीड कर रहा था और वो चोर व्यक्ति भी था, वो भी इसी भीड़ के अंदर था, अलग से जा नहीं सकता, चल रहे सब। और वो बोल रहे, अरे रात को तुम जंगल में क्यों जाओगे, जंगल में थोड़ी कोई चोर छुप सकता है। और फिर थोड़ी देर में फिर सब लोग कहते नहीं चलो जंगल की ओर, मुखिया कहते जंगल की ओर चलो। तो व्यक्ति कहता था, अरे भाई कि जंगल में सारे स्नेक सांप बिच्छू है, वहां पर कौन चोर छुप सकता है। और जैसे जंगल की ओर आगे बढ़ने लगे, ये व्यक्ति जब पीछे पीछे खिसकने लगा, है कि नहीं। और जंगल जाके जो है उन्होंने देखा, जंगल में उन्हें जहां से गार्ड ने बताया था उन्हें वो सामान मिल गया, जो उसके घर का सामान था हीरे जवाहरात से। तो सबको समझ में आ गया चोर कौन था। वही व्यक्ति जब खिसक रहा था तो खिसक भागने लगा और लोग उसके पीछे भागने लगे, चोर 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 ऐसे करके चिल्लाते थे। देर को होता थी वहां पर चोर जा रहा है, चोर जा रहा है, पकड़ो पकड़ो मारो से ऐसे करके लोग चिल्ला रहे थे। ये आदमी आगे भाग रहा था और रात थी तो जब आगे भाग रहा था पहचाने वाले थे तो इस आदमी ने क्या किया, ये भी चिल्लाने लगा। जो साथ साथ के लोग थे जो जो साधारण नागरिक थे जो राहगीर थे वहां के उनको चिल्लाने लगा, देखो वो रहा चोर 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 पकड़ो से चोर पकड़ो चोर ऐसे करके। और ऐसे वो जो है पूरा कंफ्यूजन क्रिएट करके भाग गया वहां से ऐसे करके। तो आपको समझ आ रहा होगा ये कहानी तो बड़ी अच्छी है, इसका तात्पर्य बहुत गुड है। मैं एग्जैक्टली इसी बुक से पढ़ के आपको बताता हूँ भगवान ने क्या बोला है कि देर इज नो डर्ट ऑफ सच मिस्चीवस एथिस्ट अमंग द पीपल, कि लोगों में नास्तिक लोगों को जो है की कमी नहीं है ऐसे करके। और वेद शास्त्र में बताया है क्या, भूतारण जगह तपस्याम सर्व लोक महेश्वरम सुजम सर्व भूतारण ज्ञातम शांति निक्षति, कि भगवान जो है हर चीजों के भोक्ता है, महेश्वर है और नियंता है और उसके जो है प्रोप्राइटर है, ओनर है, कंट्रोलर है, सब कुछ भगवान है ऐसे करके। और जो भगवान को ऑफर नहीं करता वो क्या है, वो चोर है वास्तविकता के अंदर, है कि नहीं। तो चोर कौन हुआ, जो भगवान को दुनिया को ऑफर नहीं करता। लेकिन उसी समाज के अंदर कुछ वैष्णव लोग होते हैं ऐसे करके, और ये वैष्णव लोग क्या करते हैं, भगवान के नाम का प्रचार करते हैं और घर घर जाकर सबको जो है प्रत्येक जो है लोगों को शिक्षा देते हैं कि आप जो है इस भौतिक संपत्ति के पीछे मत पड़ो, ये सब भगवान के साथ भगवान की सेवा में लगाओ, भगवान के नामों का जप करो ऐसे करके। और जब ये साधु होते हैं तो क्या होता है, जो ऐसे चोर होते हैं वो साधुओं की और जो है इशारा करके बोलते हैं, देखो ये चोर है, ये चोर है ऐसे करके। और यही आज की वीडियो हम देखते हैं, जो वीडियो कहती है कि इस्कॉन करके एक संस्था अमरीकी संस्था है जो कोलगेट कंपनी के अधिक मुनाफा 3 गुना, तो वो चोर होंगे और वो जो ऐसे साधुओं के ऊपर जो है इंगित करेंगे कि ये इस्कॉन वाले चोर है या जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं वो वास्तविकता में चोर है। तो भक्त ठाकुर आप सबको पता है मैं किस बारे में जो है बोल रहा हूँ ऐसे कर, जिनको नहीं मालूम आपको पता लग जाएगा, मैं क्लास के अंदर पता कर लीजिएगा अपने आप। वी डोंट टू फ्री सचिला सब इन भागवतम क्लास ऐसे करके, वो अपने आप प्रचारित होती रहती है। और भक्तिदास ठाकुर तुलसीदास को कोट करते हुए एक बहुत बढ़िया जो है दोहा लिख रहे हैं, चोर को छोड़े साधु को बांधे, पथी को लागाओ फांसी, धन्य कलयुग तेरी तमाशा, दुख लागे और हांसी, द रियल थीफ इज रिलीज्ड, असली चोर जो है उसको मुक्त कर दिया जाता है, जो साधु पुरुष है उनको बांध दिया जाता है और जो साधारण नागरिक है उनकी उनको फांसी लड़ा दी जाती है, पति को लगाओ फांसी। वो इस मायावाद सिद्धांत चक्कर में आके फंस के वो बच्चा जन्म तो चक्कर में फंस जाते हैं, उनको फांसी लग जाती है। धन्य कलयुग तेरा तमाशा, हे कलयुग धन्य तुम्हारा तमाशा, दुख लागे और हंसी, इसको देखे दुख और लगता हंसी भी आती है कि तुम क्या तमाशा कर रहे हो ऐसे करके। तो ये सच्ची बात ऐसे करके, और प्रैक्टिकली हम देखते हैं मायावाद सिद्धांत जो है कहां कहां तक आ जाता है इस प्रकार से। और तो और ऐसे चोर लोग बाद में क्या सिद्धांत निकालते हैं कि क्योंकि अरे भाई आप लोगों को भी आध्यात्मिक संस्था चलाने के लिए या प्रचार करने के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो आप लोग इस भौतिक दुनिया का जो पैसे के पीछे पड़ी हुई है उनका खंडन क्यों करते हो, उनको उनका दुष्कार क्यों करते हो जब आप लोगों को इतना पैसा आवश्यकता है ऐसे करके। लोग ये एक अलग फिलॉसफी निकाल देते हैं ऐसे करके। और भगवान कहते हैं कि उसी प्रकार उस चौकीदार को चोर साबित करने के मुकाबले है कि चोर चौकीदार को इंगित करता है कि ये चोर है, जो यहाँ पे जो साधु पुरुष है वो चोरों से भगवान की संपत्ति को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो चोर कहते हैं अरे भाई तुमको भी तो पैसा चाहिए, हालांकि लेकिन इसलिए तो वो क्या करता है, उन साधु पुरुषों को चोर बताता है, बोले भाई आपको ना चलो ठीक है आपको भी पैसा चाहिए, हमको भी पैसा चाहिए, ठीक है आप भी खुश रहो हमें खुश रहो, आप हमें क्यों कंडेम कर रहे हो ऐसे करके। अरे भाई आपको नित्य के लिए चाहिए ऐसे करके, और साधु पुरुषों को भगवान की सेवा के लिए चाहिए। तो भक्त ठाकुर आगे लिख रहे हैं उसके अंदर, मनी कलेक्टेड बाय सेंटली पर्संस फॉर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड बाय प्रीचिंग द होली नेम ऑफ लॉर्ड श्री हरि इज नॉट फॉर स्पेंडिंग ऑन मेंटेनेंस ऑफ फैमिली मेंबर्स लाइक अ प्रोफेशनल फैमिली मैन और फॉर इंडल्जिंग इन सम इलिसिट मिसडेमीनर और पर्सनल सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। तो साधुओं को यह कहना चाहिए उस पैसे को अपने व्यक्तिगत इंडस्ट्री में ना लगाएं ऐसे करके। दैट मनी रियल सेंटली पर्सन कलेक्ट मनी एंड यूज इट वाइजली, असली साधु पुरुष है वो धन एकत्रित करते हैं लेकिन उसका एक एक जो पैसा है पाई है भगवान की सेवा में और भगवान के हरिनाम में प्रचार में लगाना चाहिए ऐसे करके। और फाइनली जो है जो जो माया की सेवा है और भगवान की सेवा है दोनों अलग अलग हैं, और ठाकुर भक्तन ठाकुर लिख रहे हैं, इन फैक्ट पर्सन हु ट्राई टू स्टील द वेल्थ ऑफ द लॉर्ड ऑफ लक्ष्मी मेक एन अटेम्प्ट टू कंफ्यूज कॉमन पीपल बाय क्रिएटिंग अ फॉल्स ह्यू एंड क्राई बाय पॉइंटिंग एट रियल सेंटली पर्सन एंड शोइंग देयर गोज द थीफ देयर गोज द थीफ कि जो लोग खुद भगवान के जो लक्ष्मीपति हैं उनके धन को चुराने का प्रयास कर रहे हैं वो क्या करते हैं ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि जो वास्तविक साधु पुरुष है या जो साधारण लागे हैं उनको भी ये बता के कि ये चोर है इस प्रकार से और पूरे समाज को जो है ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि लोग बिल्कुल जो राहगीर है अर्थात जो सामान्य नागरिक हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे सच क्या है गलत क्या है सच्चाई को गलत साबित करने लगते हैं और गलत तो खैर है ही गलत ऐसे करके और गलत को सही साबित करने लगते हैं ऐसे करके तो दैट्स द होल पॉइंट है मायावाद सिद्धांत जो है इन ब्रीफ मायावाद फिलोसॉफी हमको भगवान बनाती है और कहती है कि आप इस भौतिक जगत का और बाकी सबका को इंजॉय करो लेकिन वैष्णव फिलोसॉफी ये बताती है कि मैं भगवान का सेवक हूं और सभी वस्तुएं भगवान के जो सभी इंद्रिय सभी इंग्रेडिएंट्स हैं या जो सभी वस्तुएं हैं ये सभी भगवान की हैं उन्हें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और उसे वास्तविक आनंद की प्राप्ति हो सकती है ऐसे करके तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है छोटा नहीं बहुत बड़ा डिफरेंस है मायावाद सिद्धांत और वैष्णव सिद्धांत के अंदर जिसे जो भगवान इस श्लोक के अंदर बता रहे हैं चित्र के तुम्हारा ग्रंथराज में भागवत की श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण।